सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। तीसरा अध्याय कर्म योग की व्याख्या, और इस तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजिता। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने काम वासना के विषय में अर्जुन को कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम, कि ये महाशत्रु है बद्ध जीव का, महापापमा है, और उसके पश्चात भगवान अब इसी काम के अलग अलग रूप और इसका प्रभाव ये बताना प्रारंभ किए हैं। तो हमने हमारी पिछली सिटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की थी कि यदि भगवान ने कामवासना को शत्रु कहा है, वैरी, तो ये जो शत्रु है, इस शत्रु का प्रहार किस प्रकार से होता है। तो हमें सिखाया गया था परफेक्ट अटैक किसको कहते हैं, प्रॉपर पोजिशनिंग, प्रॉपर कैमोफ्लेजिंग। उसी प्रकार से काम वासना ने बद्ध जीव के हृदय में, बद्ध जीव के मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में अपना निवास स्थान सबसे पहले बनाया है। तो प्रॉपर पोजिशनिंग, तीन निवास स्थान जो हमने 40वां श्लोक लिया, 40वें श्लोक में पिछले बुधवार को, जिसमें कि भगवान तीन निवास स्थान बताए हैं, हमारे पांच ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, और आक्रमण की तीन स्थितियों में हमने ये भी समझा पिछली बार कि क्या करना चाहिए। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां यदि काम वासना के निवास स्थान हैं, तो इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। आपको यदि याद है तो 11वें स्कंद से हमने एक श्लोक लिया था जहां बद्ध जीव को एक विशेष नाम से पुकारा गया, इंद्रियवान। जैसे भगवान है वैसे हम लोगों को एक उपाधि दी गई है, हम लोग कौन है, इंद्रियवान, जो इंद्रिय को धारण किए हुए। जैसे भगवान का अर्थ है जो ऐश्वर्यों को धारण किए हुए, वैसे हम इन पांच इंद्रियों को धारण किए हुए। तो इंद्रियवान के लिए निर्धारित है कि वो अपने इंद्रिय को अपने ऋषि को, ऋषिकेश की सेवा में लगाए, और मन को हमने दूसरे अध्याय का श्लोक लिया था, आपूर्यमाणम अचल अप्रतिष्ठम, कि जैसे समुद्र, उसके अंदर कितनी भी नदियां, कितने भी जलाशय प्रवेश कर जाएं, कितने भी वर्षा का जल उसके अंदर प्रवेश कर जाए, समुद्र अपनी सीमाएं नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, चाहे कितनी भी काम वासनाएं सताएं उसके मन में आकर, उसका मन किस प्रकार से रहता है, समुद्र के समान रहता है, ओशियनिक माइंड। तो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का अर्थ है कि चाहे धूप चाहे वर्षा, समुद्र को प्रभाव नहीं पड़ता। गर्मियों के मौसम में इतनी झुलसती धूप होती है, फिर भी समुद्र ये नहीं कि अब सूख गया, या वर्षा में अब इतनी वर्षा हुई तो ये नहीं कि अब सब जगह बाढ़ समुद्र ने पैदा कर दी, नहीं, इनडिफरेंट, धूप और वर्षा में समुद्र इनडिफरेंट रहे, वैसे ही एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का मन इनडिफरेंट रहता है या होना चाहिए। और हाँ, तीसरा पॉइंट ये था कि जो बुद्धि है उसके संदर्भ में भगवान ने दशम अध्याय में श्लोक कहा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, कि इस बुद्धि को जब हम प्लग इन करेंगे भगवान श्री कृष्ण के सतत कीर्तन, हर समय भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन में, वो सॉकेट में जब प्लग इन करके रखेंगे हमारी बुद्धि को, और वो श्रवण कीर्तन भजन किस प्रकार का होना चाहिए, प्रीति, प्रीति पूर्वकम, तो प्रीति पूर्वक किया गया भजन उसका परिणाम क्या होता है, भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, कि मैं फिर ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं उस साधक को जिसके द्वारा वो सही निर्णय ले सके। तो यदि हमें सही निर्णय लेना है, हमारे हर कदम, हमारे जीवन के हर कदम में यदि हमें सही निर्णय लेना है, तो हमें हमारी बुद्धि को भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाते हुए संलग्न रखना है। तो अब ये सब कुछ समझाने के पश्चात, अर्थात पिछले श्लोक में काम वासना के तीन निवास स्थान समझाने के पश्चात, अब आज के श्लोक में भगवान उसी के संदर्भ में अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है इस अध्याय का, कि इस एक श्लोक में भगवान ने ऐसी गूढ़ बातें कह दी हैं कि एक सिटिंग में इसका डिस्कशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने भाग एक, पार्ट वन है आज के श्लोक का। तो यहां पर सबसे पहले भगवान अर्जुन को एक विशेष नाम से संबोधित कर रहे हैं, भरतर्षभ। अर्जुन को बहुत विशेष नाम से, बहुत कम समय भगवान ने अर्जुन को इस नाम से संबोधित किया, भरतर्षभ। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरतर्षभ, ये जो काम है जिसको मैंने शत्रु कहा है, ये पाप का चिन्ह है। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया है, इट इज अ सिंबल ऑफ सिन, पापमानम। और भगवान कह रहे हैं कि और क्या करता है ये, एक तो पाप का चिन्ह है ये काम, और उसके साथ साथ ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को नाश करने के लिए ये काम पैदा हुआ है। तो अर्जुन मानो पूछे कि भाई अब आप यदि ये कह रहे हो कि ये काम वासना पाप का चिन्ह है और ज्ञान विज्ञान को नष्ट कर देगा, तो यदि ज्ञान विज्ञान ही नष्ट हो जाएगा तो ये पाप के ऊपर विजय कौन कैसे प्राप्त कर पाएगा? जब ज्ञान ही नष्ट हो गया, विज्ञान ही नष्ट हो गया, तो फिर कोई कैसे किसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएगा? अर्जुन ने प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि अर्जुन स्वयं एक योद्धा, यहां पर बात चल रही है शत्रु, एक योद्धा के लिए शत्रु प्रहार ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत अपीलिंग होते हैं, कान खोल देते हैं एक योद्धा के। तो अर्जुन ने ये जब सारे जो टर्म सुने, शत्रु प्रहार नाशनम और वो भी ज्ञान विज्ञान, तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि भाई मैं किसी शत्रु का विनाश कर सकता हूं कब? मेरी धनुर्विद्या के बलबूते पर। किसके बलबूते पर मैं किसी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं या उसका विनाश कर सकता हूं? मेरी धनुर्विद्या। तो यहां पर अर्जुन ये पूछ रहे हैं, विद्या का अर्थ है ज्ञान, और आप कह रहे हो कि ये तो उसी समान हो गया कि मैं शत्रु के सामने शत्रु को मारने के लिए तैयार हुआ और अचानक मेरी धनुर्विद्या नाश हो गई, तब मैं क्या करूंगा? एग्जामिनेशन पेपर सामने है और पूरा हार्ड डिस्क ब्लैंक। तो अर्जुन का प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान यदि नाश हो गया तो फिर कैसे भाई, क्या आसार हैं कि इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें? तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक के शुरुआत में कह रहे हैं, तस्मात इंद्रियाणि आदौ। तस्मात का अर्थ है इसलिए, तो इसलिए संस्कृत का जो शब्द है तस्मात, इसका हिंदी अनुवाद है इसलिए। तो आपको आश्चर्य होगी अचानक इसलिए क्यों बोल रहे हैं भगवान, इसलिए क्योंकि ये पिछले श्लोक से संबंधित है, हम लोग को एक हफ्ता लग गया। तो अगर हम एक साथ दोनों श्लोक कहें तब फिर तस्मात शब्द समझ में आएगा कि पिछले श्लोक में भगवान ने तीन निवास स्थान बताए काम वासना के और फिर कह रहे हैं इसलिए इंद्रियाणि आदव, कि सबसे पहले इंद्रिय जो सबसे पहला निवास स्थान है, सबसे पहला निवास स्थान काम वासना का है हमारी इंद्रियां, पांच इंद्रियां। तो सबसे पहला जो निवास स्थान है, आदि निवास स्थान इंद्रिय, प्रजही, प्रजही का अर्थ है दमन करो, वहीं पर उस काम वासना का दमन करो ताकि वो आगे बढ़ नहीं ना पाए। नियम्य प्रजही हेनम भरतर्षभ, नियमों के द्वारा प्रजही दमन करो हे भरतर्षभ। तो पूरा अनुवाद श्रील प्रभुपाद का इस प्रकार से है, इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। काफी वायलेंट श्लोक लगता है, दमन करो, वध करो, काटो, पीटो, मारो, ये सब यही भाषा समझता है वो काम, इसलिए। तो हमारे आज की चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, इंद्रिय आदव शब्दों की व्याख्या, भरतर्षभ शब्द की व्याख्या, प्रजही येनम शब्दों की व्याख्या, पापमानम शब्द की व्याख्या और ज्ञान विज्ञान नाशनम शब्दों की व्याख्या। घबराइए मत, हम पूरे पॉइंट्स नहीं लेने वाले हैं क्योंकि भाग एक ही है। तो पिछले श्लोक से संबंध, 40वें श्लोक में जैसे हमने चर्चा की, भगवान ने काम शत्रु के तीन निवास स्थान बताए, तो तीन निवास स्थान बताने के बाद छोड़ नहीं दिया भगवान ने अब अर्जुन को कि अब बस तुम देख लो, ये जो तीन निवास स्थान है बस अब इसके आगे मैं अगला अध्याय शुरू करता हूं, नहीं, भगवान ने फिर ये भी कहा, आज के श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं भगवान, कि काम शत्रु पर सर्वप्रथम प्रहार की विधि क्या है। तो जैसे एक वैद्य होता है वो बीमारी बताता है और बीमारी के साथ साथ उपचार इलाज, कि ये तुम्हारी बीमारी है, ये तुम्हारी बीमारी के निवास स्थान है और ये है इलाज। तो ये संबंध है पिछले श्लोक से आज के श्लोक का। अब हमने ये एक मुद्दा लिया था कि पिछले श्लोक के संदर्भ में आजकल क्या हो रहा है। अब ये तो भगवान ने द्वापर युग में काम वासना के तीन निवास स्थान बताए, तो आजकल ये आधुनिक समाज में ये काम वासना के जो तीन निवास स्थान हैं, ये केवल निवास स्थान नहीं, सिंहासन पर बिठा कर रखा है लोगों ने। कोई साधारण निवास स्थान नहीं दिया है, बहुत डेकोरेट करके, इसलिए हमने ये कोट लिया था ये प्रश्न पूछते हुए, आर वी रोलिंग अ रेड कार्पेट फॉर लस्ट which is being seen in this material world, when we should be turning on red light. तो इसको कहते हैं paradigm shift. भगवद गीता क्या है? paradigm shift. जहां पर काम वासना को उसकी आवभगत की जा रही है, उसका आदर सत्कार किया जा रहा है, उसकी आरती उतारी जा रही है, उसको permanent निवास स्थान दिया जा रहा है, वहां पर भगवान रेड सिग्नल ऑन करने के लिए बोल रहे हैं कि वो डेंजर है, डेंजर, शत्रु को बुलाकर उसको खिला पिला रहे हो। तो ये समझना आवश्यक है, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हम कौन से क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं, रेड कार्पेट क्लब या रेड सिग्नल क्लब। तो भगवान यहां पर हमको सीधे सीधे बता रहे हैं कि भैया सबसे पहले उसको रेड कार्पेट वेलकम मत दो, कार्पेट निकालो, पहले कार्पेट निकालो, फिर धीरे धीरे उसको निकालोगे। और वो कार्पेट क्या है? अलग अलग तरीके से लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं काम वासना को भोगने की, वो है रेड कार्पेट वेलकम लस्ट के लिए। तो हमने पिछले श्लोक में यह सुना, भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम स्थान काम वासना का, सबसे प्रथम निवास स्थान काम वासना का है हमारी ये पांच इंद्रियां। तो हमारी ये जो पांच इंद्रियां हैं, जिनके चलते हम जो भी संतुष्टि का अनुभव करते हैं भौतिक स्तर पर, तो देखिए काम वासना ने बहुत ही चतुराई से ऐसा निवास स्थान पकड़ा है सबसे पहला, कि जिसके बिना हम कुछ कर्म ही नहीं कर सकते। ये जो पांच हमारी इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां यहां पर जो दिखाई गई, इनके बिना कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे इस समय यदि मैं आपसे पूछूं कि आपकी कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां कार्यरत हैं, आंखें, कर्ण, अब देखिए कि हमारा शरीर यहां पर है, आप लोगों का शरीर कुर्सी पे बैठा हुआ है, परंतु आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरा जो शरीर है वो पूरा शरीर तो कार्यरत नहीं है अभी, तो पूरे शरीर को कार्यरत होने की जरूरत नहीं है, केवल ये दो इंद्रियां कार्यरत रहें तो वो इनमें से अगर एक भी इंद्रिय कार्यरत रहें, अक्सर एक चालू रहती है एक बंद रहती है ऐसे होता है प्रवचन में, या तो आंखें खुली रहती हैं कान कुछ और मन की बातें सुन रहा है, या फिर उल्टा होता है। तो ये दो इंद्रियां काफी हैं आपको यहां पर डेढ़ घंटा बिठाने के लिए, है ना, जरूरत नहीं पूरी पांचों इंद्रियों को लगाने की, ये दो इंद्रियां काफी हैं। और कई तो यहां छोटे बच्चे बैठे हैं उनको तो वो समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सी भाषा बोल रहे हैं प्रभु जी, तो उनके लिए एक ही इंद्रिय काफी, कुछ तो हिलता रहता है, कभी कोई एरो इधर से आता है कभी इधर से आता है, वो चेंज होता रहता है, है ना। तो ये छोटे बच्चों को उनको एक ही इंद्रिय काफी है, बैठे हैं इस समय से। तो देखिए ये शक्ति हमारी इंद्रियों की कि इतने बड़े भारी भरकम शरीर को एक इंद्रिय बिठा कर रखती है, यहां वहां चलाती है घुमाती है फिराती है। तो सोचो पांचों इंद्रियां एक साथ कार्यरत हो जाए तो बेचारे का क्या हाल होगा, और वही होता रहता है। होता क्या है कि काम वासना ने केवल एक इंद्रिय के ऊपर अपना निवास स्थान नहीं बनाया, पांचों के ऊपर। तो अब यदि एक इंद्रिय काम वासना को लगा कि एक इंद्रिय बोर हो रहा है, आंखें बोर हो रही, चलो कुछ कानों से सुनो, कुछ समय बाद कान भी बोर हो गया, अच्छा चलो जिह्वा से कुछ खाओ, चखो, खा लिया बहुत खा लिया पेट भी भर गया, अच्छा अब फिर बकबक करो कुछ बोलो, वही जिह्वा को यूज करो कुछ बोलने के लिए, ये कुछ स्पर्श करो, ये सब अलग अलग प्रकार से काम वासना जो है वो कभी भी हमारे इन पांचों इंद्रियों को बोर नहीं होने देते, लगाए रखते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। और ये तो केवल हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट ये काम वासना पांच इंद्रियों को लगाए रखें, उसके ऊपर अगर ये जो हम देखें आधुनिक समाज माया देवी जिसने ये सारे विषय वस्तु, तो सोचो क्या डेडली कॉम्बिनेशन है। एक तो अंधेरी शत्रु बैठा हुआ है, खा पी कर एकदम तंदुरुस्त मोटा ताजा हो रहा है, और बाहर ये विषय वस्तु, उसका कॉम्बिनेशन। तो यहां पर आज के श्लोक में क्यों हम इस पर इतना गौर कर रहे हैं, क्योंकि आज के श्लोक में सबसे प्रथम पंक्ति में भगवान ने कह दिया तस्मात त्वम इंद्रियाणाद्यो, सबसे पहले इंद्रिय को निग्रह करो कि जहां सबसे पहला निवास स्थान लिया है काम वासना ने, आदि का अर्थ है सबसे पहले इंद्रिय के ऊपर निग्रह। और इसलिए आप देखिए जब हम आते हैं इस्कॉन में आते हैं या अध्यात्म को पालन करने का प्रयास करते हैं, तो हमें सबसे पहले बताया जाता है कि चार नियम क्या है, वो एक थोड़े ग्रॉस लेवल पर हमको हमारी इंद्रिय निग्रह के लिए बताया गया। आपने ये अनुभव किया होगा कि आप जैसे इस्कॉन में आए, जब अपने फिलोसॉफी सुनी या कोई प्रचारक ने आपको कुछ बताया साधना भक्ति के विषय में, तो सबसे पहले ये नहीं बताया कि मन को नियंत्रण में रखो, है ना, चैंट जप करो, फिर इंद्रिय को निग्रह में रखो, मन तो बहुत समय बाद समझ में आता है भी अंदर, अरे बाप ये मन भी अच्छा। तो पहले शारीरिक रूप से हम अपने आप को नियंत्रण में रखना यह बताया गया। तो इसलिए भगवान यहां पर यही बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने इस श्लोक की टीका में और थोड़ी गहराई में गए हो। देखो हमारे जो आचार्य हैं वो क्या करते हैं कि भगवान के मनोभाव को समझकर भगवान ने जो कहा उसको और गहराई से बताने की कोशिश करते हैं। तब इसमें एक एक स्तर गहराई में हमको कैसे उतारा जा रहा है ये मैं बता रहा हूं। तो 40वें श्लोक में भगवान ने कहा तीन निवास स्थान, इंद्रिया मन बुद्धि। आज के श्लोक में भगवान ने प्रारंभ किया तीन निवास स्थान में से जो आदव इंद्रिय, उसके ऊपर गौर करो, पहले उसके ऊपर फोकस करो, उसको नियंत्रण में रखो। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि उन पांच इंद्रियों में आदो कौन है। तीन निवास स्थान में आदि है इंद्रिय, पांच इंद्रियों में आदि भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि कौन सी इंद्रिय है जिसके ऊपर सबसे पहले निग्रह करना है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, हाँ समझ रहा है कि नहीं। अरे बोल। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इंद्रियों में सबसे पहले हमारी आंखें, आंखें खोल लीजिए, अभी आंखें खोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर हमारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सबसे पहले इंद्रियों में हमारी आंखें, और वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आंखें हैं हमारी, इन आंखों से शुरुआत होती है काम वासना की जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट आंखें। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कैसे कि काम वासना की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन, उसकी फाउंडेशन क्या है, देहात्म बुद्धि, कि देह का भोग। तब देखिए कि देह इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से कलयुग में, देह जो है उसके प्रति आकर्षण, हां सुनने से भी हो सकता है, स्पर्श करने से भी हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा आकर्षण होता है किससे, देखने से। देह के प्रति आकर्षण सबसे ज्यादा देखने से होता है, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। इसलिए तो लोग इतना लगे पड़े हैं इस देह को सजाने संवारने में। क्यों, आप जाओ दुकानें भरी पड़ी हैं साबुन, क्रीम, लोशन, ये इनके इन प्रकार है ना, इस शरीर को एकदम सुंदर दिखाने के लिए या दिखने के लिए, कपड़े, फैशन, सब कुछ ये जो चल रहा है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो क्यों, क्योंकि सबसे पहले अब लोग जो हैं, जो भौतिक देहात्म बुद्धि में हैं, वो लोग सबसे पहले अपने आप को सुंदर सजाकर आईने में देखते हैं। पहले मैं देख लूं दूसरों को, अपने आप को दिखाने से पहले कि मैं कैसा दिख रहा हूं। एक मित्र हाल ही में, एक हफ्ते पहले मुझे बता रहे थे, उनके किसी परिवार में विवाह हुआ इस वर्ष के शुरुआत में, तो बता रहे थे कि इतना ज्यादा खर्चा किया गया मेकअप के ऊपर दोनों के, वर वधु के मेकअप के ऊपर इतना खर्चा किया गया, तो मैंने पूछा मतलब किस खर्चा, किस हिसाब का खर्चा, क्या क्या मेकअप में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि शादी से एक महीना पहले हर हफ्ते मेकअप कर करके उसका ड्रेस रिहर्सल हो रहा था कि शादी के एक्चुअल दिन हम कैसे दिखेंगे वर वधु। ये मेरे लिए न्यूज था, पता नहीं आप लोगों को आश्चर्य नहीं लग रहा होगा शायद, कि एक महीना पहले हर हफ्ते की शादी के दिन जो शादी का जोड़ा होगा या फिर जो भी हेयर स्टाइल होगा या जो अलग अलग प्रकार का मेकअप होगा, और वो तो मैंने पूछा तो फिर कितना खर्चा तो बताओ कितना हुआ। बोला पूरा एक महीने का उनका दोनों का जो खर्चा हुआ पूरा, वो ब्यूटी पार्लर में जाकर दो दो घंटा, एक एक सेशन में दो दो घंटा मेकअप होता था, दो घंटा मेकअप होने, जैसे हम लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं दो घंटा होता है। तो एक एक ड्रेस रिहर्सल में दो दो घंटा ब्यूटी पार्लर में, और एक उनका ड्रेस रिहर्सल में उनका खर्चा था 2 लाख। हमारे तो भगवान की ड्रेसेस भी 15,000 में बन रही हैं, वो बहुत बड़ी फेस्टिवल के ड्रेस वो होते हैं कोई 1 लाख के। तो देखिए ये सब किस लिए, ये सब किस लिए? एक कारण इसका ये है, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में नहीं, मॉर्निंग वॉक में कह रहे थे कि ये जो आजकल आधुनिक समाज में ये शरीर के ऊपर जो इतना खर्चा किया जाता है, शरीर को इतना सुंदर बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, वो किस लिए? एक कारण ये है क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारा जो शरीर है वो बदसूरत है। इसलिए तो इंग्लिश का जो वर्ड है बहुत उपयुक्त वर्ड है, मेकअप। मेकअप का मतलब क्या है? दैट थिंग विच इज अगली टू मेक इट अप। The ugly thing to make it up into something presentable. Forget about beautiful, presentable. That's called makeup. एक मुझे SMS आया था पिछले हफ्ते, वो ये था, law of equality. When the wife says, I'll just take 5 minutes more to finish my makeup, it's the same as the husband says, I'll call you back in 5 minutes. It's called law of equality. तो प्रभुपाद ने उस मॉर्निंग वॉक में कहा, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये सच्चिदानंद नहीं, उल्टा है इसका, असत, अचित और निरानंद, ये 3 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो इसलिए ये असत, अचित, निरानंद शरीर के ये सारे फीचर्स को ढकने के लिए ये इतना सब कुछ हो रहा है आजकल। तो क्या अब देखो, अगर आप केवल आंखें लो, आंखें, तो इन आंखों को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य समाज में कितना खर्चा, कितना अथक प्रयास चल रहा है केवल इन आंखों को संतुष्ट करने के लिए। कि ऐसे ऐसे आजकल फैशन और ना ब्रांड्स चल रहे हैं कि आंखों को अच्छा दिखना चाहिए उसके लिए, और फिर उसको उत्पादन करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं, उसको मार्केट करने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं, फाइनली किसके लिए? केवल आंखों के लिए। जैसे सिनेमा है क्या कि वो सिनेमा में कोई एक सीन उनको दिखाना है, और ऐसा सीन दिखाना है, उस एक सीन के लिए करोड़ों रुपए खर्चे करते हैं, और वो सीन होगा केवल 2 मिनट का। दो मिनट की आंखों की संतुष्टि के लिए करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा। और फिर वो लोग पूछते हैं कि आप लोग भगवान के ऊपर अभिषेक क्यों करते हैं, हम तो केवल दूध दही कितने में मिल रहा है आजकल, बस वो अभिषेक कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये जो बोल रहे हैं कि इंद्रियों में सबसे पहले आंखों पर संयम, तो ये हमने श्लोक पहले भी बहुत दफा लिया है गरुड़ पुराण से, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भिरेव पंच एकम प्रमाथी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। तो ये पांच प्राणी और हमारी पांच इंद्रियां, क्योंकि भगवान यहां पर इंद्रियों पर निग्रह करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए हमने ये श्लोक पुनः लिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी इस श्लोक में सबसे पहले जो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं आंखों का एग्जाम्पल दिया गया है। इस श्लोक में सबसे पहला एग्जाम्पल किसका दिया है? पतंगा। पतंगा मौत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो लौ होती है, किसी मोमबत्ती की लौ, अग्नि से बहुत प्रभावित वशीभूत रहता है ये पतंगा, और इतना वशीभूत हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, बोलता है माइन इज अनडाइंग लव, ऐसे ये पतंगा कहता है माइन इज डाइंग लव, आई डाई फॉर यू, तो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। क्यों? क्योंकि उससे वो कंट्रोल नहीं होता है कि ये लॉ इतनी सुंदर जो दिख रही है। अभी अभी देखिए, काम वासना जो है इस संसार में बहुत टेलर मेड है, पतंगा के लिए वो लॉ, अभी हमारे सामने भी ये लॉ दिख रही है, लेकिन अगर ये पतंगा यहां पर अगर कोई उड़ता हुआ देखे इसको, तो तुरंत इसको इसका संग करने के लिए जाएगा। हम में से कोई कुर्सी से उठकर नहीं जा रहा है, हमको हम देख भी नहीं रहे, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे आंखों के लिए, हाँ ये मत समझो कि हमारे आंखों के लिए काम वासना ने कुछ बना के नहीं रखा है, नहीं, हमारे लिए अलग से कुछ बना कर रखा है, और हम लोग जानते होंगे। तो ये जो गरुड़ पुराण का श्लोक जिसके अंदर ये पांच इंद्रियों के विषय में कहा गया, इस श्लोक में पांच इंद्रियों में सर्वप्रथम आंखें, सेंस ऑफ साइट, जैसे कि उसका अगला उदाहरण, इस श्लोक में अगला उदाहरण है हाथी का, पतंग मातंग, मातंग है हाथी, तो हाथी वो काम वासना से इतना वशीभूत रहता है कि वो एक हथनी के पुतले से संग करने के लिए दौड़ता है, forgets that it is not real elephant, it's just an effigy, एक पुतला है केवल, उससे संग करने के लिए वो दौड़ता है। लेकिन गरुड़ पुराण में श्लोक के द्वारा बताया गया है कि वो उसको प्रेरणा कैसे मिली उस हथनी के पीछे दौड़ने की, देखा ना, पहले देखा हाथी ने, फिर दौड़ा स्पर्श करने के लिए। हालांकि हाथी उसके उसका जो उदाहरण दिया गया है श्लोक में, उदाहरण यह है कि हाथी अपनी त्वक इंद्रिय की वजह से मरता है, स्पर्श इंद्रिय की वजह से मरता है, परंतु उसके पतन का, उस गड्ढे में गिरने का शुरुआत होती है चक्षु इंद्रिय से, जो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि कामुक व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है आंखों से। इसलिए मीडिया आजकल और मार्केट में भी, जैसे उनके उनका एक स्लोगन है ना, सेक्स सेल्स एंड नथिंग सेल्स लाइक हाउ सेक्स सेल्स। राधानाथ स्वामी अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार वो मंदिर में कुछ पेंटिंग का काम उनको दिया गया था, तो पेंट खरीदने के लिए गए हो, तो देखा पेंट के कैन के ऊपर एक अश्लील अदनंगी स्त्री का चित्र। तो उन्होंने पूछा कि ये इसका क्या मतलब, पेंट से क्या इसका संबंध है। तो उन्होंने कहा भैया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, दुकानदार बोलता है इसको देख के लोग पेंट खरीदते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है पेंट से। लेकिन वो थोड़े से वस्त्र धारण किए हुए ब्रश लेकर वो पेंट कर रही, तो लोगों को पता ही नहीं कि उसके अंदर कौन से क्वालिटी का पेंट है। नहीं, अगर ये ऐसी अवस्था में तो आंखें एकदम पहले वहां जाती, हाँ यही वाला दो भैया। एक बार बॉम्बे में हम लोग जा रहे थे कार्यक्रम के लिए, तो ऐसे ही एक बड़ा बिलबोर्ड, और बड़ा बिलबोर्ड और एक ऐसी कोई अश्लील चित्र एक स्त्री का, उसने हाथ में वो बैटरी ले रखी और इतना सा इतने बड़े बिलबोर्ड में उसका इतना बड़ा चित्र लगा रखा है और बैटरी इतनी सी उसके हाथ में, और नीचे साइन है कि ये बैटरी आप लीजिए इतने घंटे चलेगी। तो वो तो कोई पढ़ नहीं रहा, इतने से छोटे से फॉन्ट में लिखा हुआ है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि उसके वजह से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो आंखें, भक्तिविनोद ठाकुर जो बोल रहे हैं कि इंद्रियाण आदो, कि सबसे पहले आंखें। तो कुछ उदाहरण यदि हम लें कि कैसे शास्त्रों में भी आंखों से काम वासना की शुरुआत हुई, तो विश्वामित्र मुनि सबसे पहला उदाहरण। तो भक्तिविनोद ठाकुर विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि की आंखें बंद थी, अपने तपस्या में लगे हुए। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है विश्वामित्र और मेनका, तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। विश्वामित्र मुनि आंखें बंद कर अपनी तपस्या में थे, ध्यान में लगे हुए थे। तो सबसे पहले इंद्र ने जब मेनका को भेजा, तो अब आंखें कैसे खुलवाएं इनकी, क्योंकि वहीं से अटैक शुरू होगा। तो मेनका ने बहुत ट्राई किया। अब देखो कि अचानक उनके मन में, उनके समाधि में तो प्रवेश नहीं कर पाती थी वो, तो उसने उसके जो पायल थे, पायल की आवाज करना शुरू किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हालांकि विश्वामित्र मुनि ने सबसे पहले अपने कानों से पायल की आवाज सुनी, लेकिन पायल की आवाज सुनकर ये नहीं कि उन्होंने निर्णय कर लिया कि भैया छोड़ो अभी ये सब, चलो शादी का कार्ड छापते हैं। नहीं, पायल की आवाज सुनी और फिर आंखें खोली, और फिर जो प्रहार हुआ आंखें खोलने के बाद जो सुंदरता दिखी मेनका की, तब डिसाइड किया उन्होंने। क्योंकि पायल की आवाज तो ऐसे भी, कोई पायल नीचे अगर गिरी हुई चूहा वहां से जा रहा तो पायल की आवाज आ जाएगी, ऐसे भी पायल की आवाज तो कोई भी निकाल सकता है। कोई ऋषि मुनि वहां चलता हुआ अचानक कोई नीचे पायल गिरी, पैर लग गया, पायल की आवाज आएगी, वो आंख खोल के देखा अच्छा ऋषि मुनि है, चलो वापस ध्यान में चलो। मेरे बिरादरी का तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि के मन में वो मेनका के प्रति वो इच्छाएं, भोग की इच्छाएं जागृत देखने के बाद, केवल देखने से, ये भी नहीं कि पूछा नहीं भाई हमारी कुंडली मिलती है कि नहीं, भाई तुम कौन से परिवार से हो, कौन सी जात से हो, ये सब कुछ नहीं पूछा, कहां से आए हो, नाम पता, शादीशुदा हो कि नहीं, क्या यहां पे क्या आने का मकसद क्या, कुछ नहीं, बस सीधे देखते सो, लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, या लस्ट एट फर्स्ट साइट। तो आंखों से, भक्तिविनोद ठाकुर इनका उदाहरण आंखों से, پھر اجامل, اب دیکھو اجامل بھی وہ تو اپنے گرو کی سیوا کے لیے جا رہا تھا. کچھ کھن کے لیے اجامل نے دیکھا وہ ویشیا, اور ویشیا تھی وہ, تو وہ تو کوئی افسرا بھی نہیں تھی کہیں کی, ویشیا تھی اور ایک شودر کے ساتھ وہ سنگ کر رہی تھی. تو اجامل نے آنکھوں سے دیکھا, اور آنکھوں سے دیکھنے کے پشچات پھر اجامل نے اس درشیہ کے اوپر دھیان کیا, جو کہ اور بھی ڈینجر چیز تھی کہ اس کے اوپر دھیان کیا اجامل نے. تو بھکتی ونود ٹھاکر اجامل کا ادھارن دیتے ہیں کہ اجامل کے اندر وہ انیتک سمبند کرنے کی اچھا دیکھنے سے آنکھوں سے پرارمبھ. سوبری منی, اب دیکھیے یہ ایک بہت ہی ایکسٹریم ایگزامپل ہے سوبری منی کا, کہ سوبری منی نے نہ تو مینکا کو دیکھا, وہ اتنی سندر استری کو بھی نہیں دیکھا, نہ کسی ویشیا کو, وہ تو منشیہ جات کے کوئی تھے ہی نہیں, وہ تو مچھلیوں کو دیکھا انہوں نے. تو یہاں پر ایک ایک لیول اس کا جو اٹیک کا انٹینسٹی دیکھیے. تو جمنا کے اندر سوبری منی کیا کر رہے ہیں, سمادھی میں, اور ایسا نہیں کہ وہ ابھی پانچ منٹ پہلے جمنا کے اندر گئے تھے اور اچانک انہوں نے مچھلیوں کو دیکھ لیا, نہیں, بہت ورشوں سے اندر تھے وہ, پورا ان کا شریر گل چکا تھا, بہت ورشوں سے وہ جمنا کے اندر وہ دھیان کر رہے تھے یوگا ابھیاس. تو سوچئے کہ اندر ایسا دھیان کہ جہاں پر سانس, اندر آپ ایسا نہیں کہ وہ آکسیجن سلنڈر لے کے بیٹھے ہوئے تھے سوبری منی, اپنی یوگ شکتی سے سانس روک لی, اور ایک دن انہوں نے مچھلیوں کو, دو مچھلیاں آئیں اور مچھلیاں آپس میں وہ سمبھوگ کر رہی تھی. تو اس درشیہ کو دیکھ کر سوبری منی ان کے من میں وہ بھوگ اچھا جاگرت ہو. تو کتنے سمے دیکھا ہوگا, بس کچھ کھن, پرنتو اس کے وجہ سے پھر جو ان کے جیون میں وہ ایک سونامی آئی, اس کی بھی ہم چرچا کریں گے آگے. بلو منگل ٹھاکر, اب بلو منگل ٹھاکر بہت ہی سندر کتھا ہے ان کی, کہ یہ ایک ویشیا سے اتنے زیادہ آکرشت, چنتامنی جس کا نام, روز اسے ملنے جاتے, اور وہ ایک دن جب ان کے پتا کی مرتیو ہوئی اور انتم سنسکار ان کو کرنا ہے کیونکہ یہ پتر, تو انتم سنسکار چھوڑ کر یہ باڑھ آ رہی تھی اس دن اس ندی میں, جس کو کراس کیا انہوں نے ایک شو کے اوپر بیٹھ کر, ایک شو اس ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا, تو شو کے اوپر بیٹھ کر یہ ان کے ان پرکار نہ کیسے تو مجھے چنتامنی کو دیکھنا ہے, اور چنتامنی وہ تھوڑے دو تین فلور اوپر رہتی تھی جس مکان میں رہ رہی تھی, تو گیٹ بند, بارش آ رہی ہے, آواز نہیں سنائی دے رہی ہے, تو کھڑکی سے اوپر میں چڑھوں گا, لیکن کیسے اوپر پہنچوں میں, تو ایک سانپ لٹکا ہوا تھا, سانپ بارش کی وجہ سے ایک سانپ وہاں اندر پرویش کر رہا تھا, تو سانپ کو لٹک کر وہ اندر پرویش کی, کیوں, دیکھنا ہے تمہاری سندرتا کو دیکھ. تو چنتامنی نے کہا کہ یدی اتنی تیورتا بھگوان کے پرتی ہوتی تمہاری تو اتنے بڑے تم سنت بن گئے ہوتے. تو ہم یہ کتھا جانتے ہیں, پھر وہ ان کو پت پردرشک گرو مان کر بلو منگل ٹھاکر بہت بڑے سنت بنے, اور وہ برج منڈل میں رہ رہے تھے, وہاں پر بھکشا مانگ کر ایک اپنا جیون جی رہے تھے سادھو کا جیون. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک گھر میں بھکشا مانگنے کے لیے گئے, اور وہاں پر جو استری ان کو بھکشا دینے کے لیے آئی, तो उस स्त्री से इतना आकर्षित फिर से हो गए उसकी सुंदरता को देख, तो वो स्त्री से रोज भिक्षा मांगने जाता। और एक बार वो स्त्री को लगा कि ये इनकी नजर ठीक नहीं है मेरे प्रति, तो एक बार बाजार में वो स्त्री के पीछा पीछा करने लगे और वो स्त्री इतना डर गई, वो अपने घर में गई और अपने पति को कहा कि ये मेरा पीछा कर रहा है, बुरी नजर इसकी शायद है। तो देखा कि अरे भाई साधु के वेश में, तो देखो उस समय के संस्कार क्या थे, तो जाके पूछे कि भाई क्या चाहते हो, पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे आपकी धर्मपत्नी जो है उसके साथ एकांत में आप छोड़ो कुछ समय के। सोचो ये पति को बोलना पूछना कि मुझे तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ एकांत में छोड़ो, तो उन्होंने अपना वचन रखा कि ठीक है। तो उनकी पत्नी बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। तो फिर जब एकांत में बिल्वमंगल ठाकुर थे इनकी पत्नी के साथ, तो बिल्वमंगल ठाकुर ने इनकी पत्नी को कहा कि तुम्हारे केश में जो केशबंद है हेयर पिन वो निकाल कर दो मुझे। इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या मांग रहे हैं, तो उन्होंने अपना हेयर पिन निकाल कर दिया और बिल्वमंगल ठाकुर ने उस स्त्री के सामने उसके वो दो केशबंद हेयर पिंस लेकर अपनी दोनों आंखें उखाड़ दी और फिर ये बिल्वमंगल ठाकुर जो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के इतने अनन्य भक्त बने कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इनको अपना सानिध्य देने के लिए आए। और वो प्रसिद्ध दोहा है जहां पर बिल्वमंगल ठाकुर भगवान से कहते हैं, छोटे से भगवान, और भगवान से वो कहते हैं कि आप मेरी गिरफ्त से कहां भाग कर जाओगे, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर जो मैंने आपको बंदी बना रखा है। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनी आंखें क्यों उखाड़ी, भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे हृदय में इतने वर्षों के बाद साधना करने के बाद भी ये काम वासना प्रवेश कहां से की, आंखों से, तो मैं ये आंखें ही निकाल दूंगा कि एंट्री गेट बंद किसका, काम वासना के अंदर जाने का। खैर इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस किसी को भी काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो वो मार्केट में जाकर हेयर पिन खरीदता रहे, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है कि कितनी बार भी आंखें उखाड़े फिर भी अंदर से, अंदर की आंखों से जो हार्ड डिस्क में इतना स्टोर रखा है। तो बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण भक्तिनोद ठाकुर दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने इंद्रियाणादो, आज का जो श्लोक है कि इंद्रियों, पांच इंद्रियों में से सर्वप्रथम जो हमारी चक्षु इंद्रिय है उसको निकाला बाहर। अब अंग्रेजी में एक फ्रेज है जो कि आज का जो श्लोक है उसकी पहली पंक्ति जो भगवान कहना चाहते हैं, अंग्रेजी में ये फ्रेज है निपिट इन द बड। निपिट इन द बड का अर्थ है कि मान लीजिए कोई जहरीला कोई पेड़ उगने वाला है या कोई कांटेदार बबूल ऐसा कोई पेड़ उगने वाला है, और आप जानते हैं अभी वो कौन से स्टेज में, बडिंग स्टेज में, एक पौधे के स्टेज में, तो ये इंग्लिश में एक फ्रेज है कि उसको बढ़ने से पहले उखाड़ दो, इसको कहते हैं निपिट इन द बड। तो आज की जो पहली लाइन है उसके अंदर भगवान यही इंग्लिश का फ्रेज संस्कृत में अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन लस्ट निपिट इन द बड, इंद्रियों के द्वारा जो वो लस्ट मन के अंदर घुसेगा ना, फिर बुद्धि के अंदर घुसेगा, वहां तक पहुंचने से पहले इसको यहीं उखाड़ दो, कट इट हियर इटसेल्फ। तो मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था कि ये जो भगवान ने यूज किया निपिट इन द बर्ड, और हमने पिछले हमारे सेटिंग में लस्ट को किससे कंपेयर किया था, HIV एड्स वायरस से कंपेयर किया था, याद है क्या कंपैरिजन था, व्हाई लस्ट एंड हाउ लस्ट वाज कंपेयर्ड टू एड्स वायरस। हमारे शरीर में ही वो प्रवेश करकर हमारे शरीर की ही शक्ति इस्तेमाल करकर हमारे ही शरीर को खत्म कर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एनिमी HIV टेक्स शेल्टर ऑफ अवर ओन बॉडी, यूजेस ऑल द एनर्जी ऑफ अवर ओन बॉडी टू डिस्ट्रॉय अवर ओन बॉडी। निहत्ता आता है तो हमको लगता है कि ये क्या प्रहार करेगा, निहत्ता हमारे अंदर घुसकर हमारे ही अस्त्र शस्त्र उठाता है और हमारे अस्त्र शस्त्र उठाकर हमें के ऊपर छुरा घोपता है, इतना खतरनाक ही है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा काम वासना भी उसी प्रकार से निहत्ता आएगा, हमारे अंदर प्रवेश करेगा और हमारी ही शक्ति इस्तेमाल करकर हमको खत्म करेगा। आज के श्लोक से हमने लस्ट का कंपैरिजन कैंसर से किया। आप लोग सोच रहे होंगे एक से एक खतरनाक एग्जाम्पल आ रहे हैं, एड्स और कैंसर, क्योंकि इससे भी खतरनाक है ये काम वासना। तो आज के श्लोक के संदर्भ में हमने लस्ट का कंपैरिजन कैंसर से क्यों किया, एनी गेसेस? इट स्प्रेड्स, हाँ यस इट स्प्रेड्स, या इट कैन बी क्योर्ड एट द फर्स्ट स्टेज, कैंसर कैन बी कंट्रोल्ड इफ यू निप इट एट द बड, है कि नहीं? लेकिन अगर सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसके आगे के स्टेजेस में चला गया, जैसे कि एक मेडिकल टर्म है, हम सबके अंदर कैंसर के सेल्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग, अगर हमारे अंदर डायग्नोज नहीं हुआ है तो हम लोग बहुत स्वस्थ हैं, हम सबके अंदर हैं, एवरीवन हैज दोज कैंसरस सेल्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसरस सेल्स, मेडिकल टर्म इज, वन इज कॉल्ड बिनाइन एंड द अदर इज कॉल्ड मेलिग्नेंट। तो बिनाइन क्या है कि खतरनाक नहीं है, या मासूम, मासूम है वो भी, अभी तक बच्चा है, मासूम है। और मेलिग्नेंट कैंसरस सेल क्या होता है, अब खतरनाक, अब जानलेवा हो गया वो, जानलेवा, मेलिग्नेंट मतलब जानलेवा। तो अगर बिनाइन स्टेज पर उसको निकाल दिया जाए, शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, तब फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। और बहुत से पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है, वो क्योर हो जाते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक में हम लस्ट का कंपैरिजन कैंसर से कर रहे हैं। भगवान ये बोल रहे हैं लस्ट इज लाइक कैंसर, बट अर्जुन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज, इंद्रियाण आद्यो, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, बाहर निकालो, उसका ऑपरेशन करो, उस कैंसरस सेल को पहले ही बाहर निकालो। अगर तुम डिले करोगे, निग्लेक्ट करोगे, तो फिर ये ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा, तब फिर नाम नाम सत्य होगा। तो इसलिए निप इट एट द बड का अर्थ वो है। तो ये जो फ्रेज हमने लिया, अब इसके संदर्भ में एक फिजिक्स का टर्म, उसके विषय में हम थोड़े समय के लिए चर्चा करेंगे। एक बार पहले भी हमारे भागवतम क्लास में हमने इसके विषय में चर्चा की थी कि ये हमको एयरफोर्स में सिखाया था, ये थियरी डिटर्मिनिस्टिक कियोस थियरी। ध्यान से सुनिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना टेक्निकल नहीं होगा ये, हम समझा देंगे आपको क्या है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक क्योस थियरी है, ये मिस्टर एडवर्ड लॉरेंस करके एक मेटेरोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट हुए थे, बहुत 1950s की बात है। तो उन्होंने ये क्योस थियरी के प्रोपाउंडर हुए, फादर ऑफ क्योस थियरी। तो उन्होंने इसमें एक मुद्दा बताया, द बटरफ्लाई इफेक्ट। तो क्योस थियरी ये है कि अगर पॉइंट ए पर आप बदलाव करते हो किसी वस्तु का, तो उस थोड़े से बदलाव के वजह से, पॉइंट ए पर थोड़े से बदलाव के वजह से, अगर आप पॉइंट जेड, अगर ए बी सी डी पूरा आप करो, पॉइंट जेड पर जाओ तो बहुत बड़ा आप परिवर्तन देखोगे। अ स्मॉल मिनिस्क्यूल चेंज एट पॉइंट बी रिजल्ट्स इन ह्यूज ह्यूमंगस चेंजेस एट पॉइंट जेड। तो हमको हमारे फायरिंग के समय ये क्योस थियरी समझाई गई थी, राइफल शूटिंग के समय। तो सामने बुलजाए है और हमको बताया जा रहा था कि कैसे आपको आपका एम अलाइन करना है बुलजाए से। और फिर हमको थियरी में, फायरिंग की थियरी में ये जो क्योस थियरी बताई गई कि अगर आपको यहां से दिख रहा होगा कि वो जो टारगेट है आपका वो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप आपके एम को, आपके निशाने को 0.1% डिग्री चेंज कर लोगे तो जो बुलेट है, बुलेट का जो ट्रेजेक्ट्री है वो दूसरे के टारगेट पे जाएगा। और ऐसा होता है बहुत बार, थोड़ा सा यहां पर शिफ्ट। तो फ्लाइट नेविगेशन में भी ये हमको बताया गया था, If a flight takes off from New York and the navigation is all about the longitude and the latitude, and if there is 1 degree of shift in longitude in the navigation of the aircraft which has taken off from New York, instead of landing, which it was supposed to land, say in Moscow, it will land somewhere in Israel. अगर वो पाथ पे जो चेंज हो गया, 1 degree चेंज हो गया, उस पाथ पे जाता रहे जाता रहे जाता, इसको बोलते हैं क्योस थ्योरी। स्मॉल चेंज ह्यूज डिफरेंसेस। तो इन एसेंस जस्ट रिमेंबर, क्योस थ्योरी में स्मॉल चेंज ह्यूज डिफरेंसेस। तो भगवत गीता में 2.62 में भगवान क्योस थ्योरी समझा रहे हैं हमको। सब कुछ है गीता में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ है। तो किसको याद है 2.62? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्ते शुप जायते संगात संजायते काम काम क्रोधो भी जायते। तो भगवान क्योस थ्योरी कैसे समझा रहे श्लोक के द्वारा कि थोड़ा सा ध्यान किसी ने किया विषय के ऊपर, कंटेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट लीड्स टू व्हाट, यहां पे लिखते हैं भगवान, व्हाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस अ पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट। वो कंटेम्पलेशन, कोई अगर ये सोचे कि मैं तो खाली काम वासना पर ध्यान कर वापस बिडबैग उठा लूंगा, नहीं, भगवान कहते हैं वो थोड़ा सा जो चेंज लाया आपने, मिनिस्क्यूल चेंज, इट रिजल्ट्स टू अटैचमेंट, अटैचमेंट देन अटैचमेंट लीड्स टू लस्ट, लस्ट रिजल्ट्स इन एंगर। फिर इसके अगले वाला श्लोक भी भगवान कंटिन्यू करते क्योस थ्योरी, क्रोधोद्भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो अगर पॉइंट ए ध्यायतो है तो पॉइंट जेड क्या है, प्रणश्यति, और उसके बीच में जो कुछ हुआ दैट्स डिटेल। तो ये जो दो श्लोक है 2.62 और 63 जिसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि निपिट एट द बड, वहां से शुरुआत करो ध्यान। इसलिए इसका पॉजिटिव क्योस थियरी जो भगवान ने यहां पर समझाया, इसका पॉजिटिव अगर हम समझें तो भगवान ने मन मना भव मद भक्तो वो भी समझाया है कि वही ध्यान को मुझ में लगाने से क्या होगा, वही ध्यान को विषय वस्तु पे लगाने से क्या होता है और वही ध्यान को भगवान पर लगाने से क्या होता है। ह्यूज डिफरेंस डेफिनेटली, बट दैट ह्यूज डिफरेंस इज द पॉजिटिव डिफरेंस। तो अगर हम शास्त्र से कुछ उदाहरण लें, शास्त्र मतलब फिर से कुछ उदाहरण वही रहेंगे जो अभी हमने इसकी चर्चा की, लेकिन केओस थ्योरी के संदर्भ में, तो सबसे पहला उदाहरण है देवराज इंद्र ने अपने गुरु को निग्लेक्ट किया, एक क्षण, केवल एक क्षण के लिए। इंद्र की पूजा चल रही थी अमरावती में, उनके गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया, मिलने के लिए आए थे। इंद्र उस समय जो भी कोई उनके चामर या पंखा जो भी आरती चल रही थी, तो एक क्षण लेट हो गए, वो देख लिया था उन्होंने बृहस्पति उनके गुरु को, लेकिन एक क्षण लेट हो गए, बृहस्पति चले गए वहां से, अपमानित होकर चले गए। उसके पश्चात फिर राक्षस, उनको पता लगा कि इंद्र ने ये गुरु अपराध कर दिया है, वन मोमेंट ऑफ निग्लेक्ट, तो वो लोग प्रहार किए, क्योंकि वो वन मोमेंट ऑफ निग्लेक्ट से इनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और उसकी वजह से वो देवासुर संग्राम हुआ, वो सब हार गए, बलि महाराज ने विजय प्राप्त की इनके ऊपर, ये सब कुछ वो कर पाए क्यों? वन मोमेंट ऑफ निग्लेक्ट। तो इतना बड़ा केओस हुआ, उसकी शुरुआत कहां से, अगर आप जाओ तो उसकी शुरुआत कहां से हुई, दैट वन मोमेंट ऑफ निग्लेक्ट। अजामिल, इनका उदाहरण अगर वापस लें, तो अजामिल ने कोई वहां पर घंटों तक बैठकर, अजामिल नहीं देख रहा था वो दृश्य को, जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट अजामिल ने देखा था, भक्तिनो ठाकुर कहते। और सोचो कि उस इतने से कम समय का जो उसकी आंखों का संग काम वासना के साथ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, अपनी पत्नी को डाइवोर्स कर दिया, अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया, उस वैश्य को बुला के उससे शादी की और पाप कृत्य में लगा, और इतना पूरा उसका जो जीवन काल बिता दिया उसने पाप में। उसकी शुरुआत कहां से हुई, वन मोमेंट। फिर से हम सौवरी मुनि का वापस से, अब सौवरी मुनि का उदाहरण केओस थ्योरी के संदर्भ में, कि कितना समय वो मछलियों को संग करते हुए लगा होगा उनको देखने में, और उसके बाद फिर वो बाहर निकले, बाहर निकलकर वो उनका जो शरीर इतना गल चुका था, इतने बूढ़े हो चुके थे, फिर भी लेकिन अभी मेरे को भोग करना है, तो वहां के जो राजा थे मंदहाता, वो राजा के पास गए और राजा की जो पुत्रियां थी राजकुमारियां, अब देखो इनके एक्सपेक्टेशन थे कि मुझे उनके साथ विवाह करना है, तो इतने बड़े ये तपस्वी योगी आए हैं तो इनको मना करेंगे, शाप वगैरह दे देंगे, तो राजा मंदहाता भी डर गए। तो उन्होंने अपने उनकी जो 50 बेटियां थी पुत्रियां, उनको कहा कि भाई तुम बोलो तुमको करने कैसे शादी। तो वो तो देखे इनके रूप को, तो वापस चले गए अपने अपने कक्ष में, भयानक दिखता है। तो सौवरी मुनि फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने आप को पूरा मेकअप जो बोल रहे थे ना, उधर ही उनके अंदर ही सब ब्यूटी पार्लर सब फिट था, तो अपने अंदर ही सब कुछ करके एकदम सुंदर जवान बनकर आ, जैसे वो आए तो पूरे 50 की 50 हम सबको करना है इससे शादी। ये देखो आंखों का खेल क्या होता, पहले उसको देखकर भाग गए, बाद में उसके सुंदर शरीर को देखकर हमको करनी है इससे शादी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे थे कि पांचों इंद्रियों में आदि है आंखें, और फिर 50 अपने आप को 50 रूप में विस्तारित किया है सौवरी मुनि, क्योंकि अभी सबको खुश रखना है। और फिर बहुत वर्षों तक इनके साथ रहते हुए सौवरी मुनि, उनको ख्याल आया कि मैं क्या था, क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, फिर उनको ध्यान में आया और फिर वो साक्षात्कार आया और वापस से वो भगवान की भक्ति में लगे। तो उनको ख्याल क्या है, कहां से शुरुआत हुई, मैं इतना इतनी बड़ी तपस्या में लगा हुआ था, ब्रज मंडल में, मथुरा मंडल में, यमुना के अंदर जाकर, अरे वो क्या, वो दो कौड़ी की मछलियों को देखकर मेरे को क्या, मेरा मति फिर गई मेरी। वहां से उनको फिर एपिफनी जिसको बोलते हैं, एकदम साक्षात्कार आ गया। लेकिन शुरुआत कहां से, वो क्षण, एक क्षण अजामिल की शुरुआत वहां से, वो एक क्षण। तो ये है शास्त्र के कुछ उदाहरण। अब भगवान ने आज के श्लोक में अर्जुन को भरतर्षभ इस नाम से संबोधित किया। तो भरत और ऋषभ ये दो शब्दों से बना है भरतर्षभ। तो ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ और भरत है भरत वंशियों में, शकुंतला पुत्र भरत के वंश में अर्जुन जो पैदा हुए, भरतर्षभ। तो बहुत सोच समझ के भगवान अर्जुन को और किसी नाम से नहीं पुकार रहे, ऐसे नहीं कि अचानक भगवान को ये नाम याद आ गया इसलिए बोल दिया, बाकी कोई नाम याद नहीं आ रहा था, नहीं। क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं भरतर्षभ को यदि हम दूसरे अर्थ से समझें तो इसका विभाजन अगर तीन भागों में करें तो भ, रत और ऋषभ। तो भ कहा गया है ज्ञान और रत ज्ञान में लगे रहना, वो है भरत। भरत का एक अर्थ है जो ज्ञान में लगा हुआ है। तो भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं भरतर्षभ कि ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, हरे कृष्ण, थोड़ा जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने कहा है ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि चाहे कोई कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन तुम उन ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि तुमने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त की है। अर्जुन के जो भी उनके जितने भी मेडल्स थे, सर्टिफिकेट्स थे, उनका जो बायोडाटा था, क्रेडेंशियल्स अर्जुन का, वो सारे उनके रेज्यूमे, अर्जुन के रेज्यूमे में एक था कि उर्वशी के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। वो हम कथा जानते हैं, वो गए थे अमरावती इंद्रलोक, वहां पर ये लेने के लिए, अस्त्र शस्त्र लेने के लिए, और इंद्र उनको लगा कि अरे भाई ये पृथ्वी से आया है, इसने यहां का नमूना नहीं देखा हो। तो उर्वशी को कहा, उर्वशी डांस परफॉर्मेंस दिखाओ, अर्जुन को दिखाओ। तो इंद्र नहीं जानते थे कि अर्जुन, हालांकि इंद्र उनके पिता बने हुए थे, लेकिन अर्जुन इतने ज्यादा संयमी कि उर्वशी जब नृत्य कर रही तो अर्जुन देख रहे थे अपनी आंखों से, लेकिन अर्जुन देख रहे थे कि मेरे जो पूर्वज ये उर्वशी ने उनके साथ भी संग किया था, उनको सब पूर्व उनकी कथा सब याद आ रही थी। तो अर्जुन उस दृष्टि से देख रहे थे कि ये तो मेरी पड़दादी दादी पड़दादी उस प्रकार से है ये, तो अर्जुन वो दृष्टिकोण से देख रहे थे। और इंद्र उनको लगा कि तीर चल गया लगता है, हाँ अर्जुन लगता है कि उर्वशी पसंद आ गई अर्जुन को, तो आनी थी भाई उर्वशी, हमारे यहाँ की नंबर वन मिस अमरावती है। तो फिर उर्वशी को भेजा, जाओ तुम अर्जुन को प्रपोज करो जाकर। तो जैसे ही उर्वशी जाती, और उर्वशी उसने भी अर्जुन के विषय में बहुत कुछ सुना था, कि सबसे बड़े धनुर्धर पृथ्वी लोक के अर्जुन आए। तो अर्जुन ने जैसे ही उर्वशी को देखा एकांत में, तो अर्जुन तो हे माते कहकर दंडवत किया। बहुत बड़ा इंसल्ट है वहां पर, स्वर्ग में अप्सराओं के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है उनको कोई माताजी बुला दे तो, क्योंकि एक तो उनके बच्चे बच्चे तो होते नहीं, माताजी तो बनते ही नहीं वो लोग। स्वर्ग में कोई ऐसे बच्चे घूमते नहीं रहते कि अनाउंसमेंट करना पड़ता है इंद्र को कि अभी उर्वशी का नृत्य परफॉर्मेंस चालू होने वाला है, सब बच्चे बाहर लॉन पर जाएं। तो वहां पर उर्वशी जैसी एकदम नवयुवती इतनी सुंदर, और उसको अर्जुन ने माताजी बोल दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो फिर उसने शाप दिया, वो सब कुछ वो कथा हुई, ब्रह्मनला बने फिर अर्जुन। तो यहां पर भगवान उस घटना को याद करते हुए अर्जुन को भर्तृषभ बुला रहे हैं कि अर्जुन बड़े बड़े ज्ञानी उर्वशी के सामने घुटना टेक दिए, है ना, वो प्रपोज करते घुटना टेक कर प्रपोज करते ना, मे आई मैरी यू, घुटना टेक कर करते ना वेस्ट में, तो बड़े बड़े घुटना टेक दिए उर्वशी के सामने, लेकिन अर्जुन तुमने अपने काम वासना पर विजय प्राप्त की है, इसलिए ज्ञानियों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, हे भरतर्षभ अर्जुन। तो भगवान भरतर्षभ के द्वारा ये बता रहे हैं कि वो श्लोक अर्जुन के लिए नहीं था। 3.41 किसके लिए? हम लोगों के लिए, जो हम लोग यहां पर, यहां के जो तथाकथित उर्वशियां या जो भी हमारे विषय वस्तु है उनसे आकर्षित हैं, तो हमारे लिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानियों में हे अर्जुन तुम इसके परे हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो भगवान इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि जो अर्जुन के तरह मेरा भक्त बन जाता है, तो वो सारे जो लेवल्स हैं काम शत्रु के उसको पार कर जाता है। और फिर हमारे आचार्यों ने कछुए का उदाहरण दिया है। तो 2.58 में भगवान ने इंद्रियों के संदर्भ में कछुए का उदाहरण दिया था, याद है आप लोगों को? बहुत बहुत समय हो गया है, शायद याद नहीं होगा। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्यश्च तत्व तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस 2.58 में भगवान कछुए का उदाहरण दे रहे हैं, कूर्म, कूर्म अंगानि सर्वशः, कि जैसे कूर्म, जैसे कछुआ अपने सारे इंद्रियों को, आपने अगर देखा होगा हमारे यहां पर भी एक कछुआ था, कि कछुए को जब भी कोई खतरा आता है तो तुरंत, ये जो देख रहे हो आप उसका पीछे का जो इतना बड़ा वो इतना कड़क शेल होता है, उसके अंदर पूरा अंदर डाल लेता है अपने सारी इंद्रियों को, पूरे इंद्रियों को अंदर डाल लेता है, और जैसे ही खतरा चला गया तो फिर वो धीरे धीरे अपनी इंद्रियां बाहर निकालता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिर, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के मंदिरों में भगवान विष्णु के विग्रह के सामने आप देखो जमीन पर कछुआ ऐसा फैला हुआ अपनी इंद्रियों को बाहर निकाला हुआ, देखा आपने? तो वो यही श्लोक के संदर्भ में है। तो वो ये कहा गया है कि जब हम देखते हैं मंदिर में एक भगवान के विग्रह के सामने कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को बाहर फैलाए हुए भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, तो उसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान के मंदिर में आए तो कछुए के समान हमारी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। उल्टा हो जाता है, मंदिर में आते हैं सब अंदर कर लेते हैं और बाहर जाते ही फिर सारी अच्छा अच्छा उधर दांडिया चल रहा है, अच्छा अच्छा इधर ये खाने के लिए, इधर ये, तो बाहर जाते ही हम कछुए की तरह सब खोल देते हैं अपनी सारी इंद्रियां। उल्टा होना चाहिए, बाहर जाते ही सारी इंद्रियां अंदर और मंदिर में आते ही सारी इंद्रियां बाहर। तो भगवान जो इंद्रियों का उदाहरण दे रहे हैं, ये हमारे आचार्य इस श्लोक को याद, मुझे याद है हमारे बचपन में हम हमारी एक बाल विहार की क्लासेस होती थी, तो उसमें गीता के श्लोक लेकर हमारे एक टीचर थे, बहुत सुंदर समझाया करते थे। तो मुझे अभी भी याद है ये श्लोक, बहुत सारे श्लोक ऐसे जिसके अंदर उदाहरण था मुझे अभी भी याद है वो, मैं शायद कुछ छठी सातवीं कक्षा में हुआ हूंगा। तो ये श्लोक हमारे वो टीचर, उन्होंने ये श्लोक हमको समझाया, कूर्मोंगानि व सर्वश यथा यदा संहरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वश, और फिर उन्होंने एक एक इंद्रिय के विषय में बता रहे थे। फिर हमको उन्होंने एक गीत सिखाया, इस श्लोक के संदर्भ में उन्होंने हमको एक गीत सिखाया, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, बहुत प्रसिद्ध है ये दोहा, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। तो मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने ये पद गाते हुए हमको बताया कि आपकी एक एक इंद्रिय को आप कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते रहो, है आंख जो श्याम का हर समय दर्शन किया करे, है शीश जो उनके सामने नतमस्तक हो, और ये जो जबान है हमारी वो हर समय क्या करती रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हर समय जब हमारी इंद्रियां उस कूर्म के समान भगवान की सेवा में अग्रसर रहेंगी, तब जाकर हम, तो भगवान ने आज के श्लोक की पहली पंक्ति कही है, तस्मा त्वम इंद्रियाणाद्य हो, कि ये जो पहला निवास स्थान है काम का, इसके ऊपर, इस किले के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। ये पहला किला है, अभी और दो बाकी हैं, तो उसकी चर्चा हम अब भाग दो में, जो भगवान आज के श्लोक में और बहुत गहन मुद्दे बताए हैं कि ज्ञान विज्ञान नाशनम प्रजहिहीनम, ये सारे मुद्दे, इसकी चर्चा हम अगले बुधवार को करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, ताई गौर प्रेमानंदी।